हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। आगे के कुछ दिन तीनों जोड़ों के लिए खुशनुमा रहे थे। मृणाल, जो बीते कुछ महीनों से निहारिका और कुश को ज्यादा वक्त नहीं दे पा रहा था, अब उसने वापस से काम के साथ अपनी इस छोटी सी फैमिली के लिए वक्त निकालना शुरू कर दिया था। निहारिका का ध्यान भी रखता था। बाकी सबको जब गुड न्यूज़ मिली तो सभी बहुत खुश हुए और उन्हें ढेरों बधाइयां दी। नन्हा कुश तो खुशी से पूरे घर में उछलता फिरता रहा। निहारिका से अब वो और क्लोज हो गया था। रोज अपने पिटारे में से ढेरों सवाल निकालता, जिनके जवाब निहारिका धैर्य के साथ देती थी। कुश अब शरारत करने की जगह उसके आगे पीछे घूमता रहता था, बिल्कुल वैसे जैसे मृणाल करता था। निहारिका मृणाल और कुश की बढ़ती मोहब्बत और प्यार के साथ बेहद खुश थी। आधा दिन ऑफिस में मृणाल के साथ तो आधा घर पर कुश के साथ बिताती थी। कबीर और माधुरी दोनों ऑफिस जाने लगे थे। कबीर ने माधुरी का डेस्क अपने कैबिन में शिफ्ट करवा लिया था। काम के साथ दोनों एक दूसरे के साथ पूरा वक्त भी बिताते थे। कबीर उसके खाने पीने से लेकर आराम तक सबका ख्याल रखता था। घर पर भी सब उसका उतना ही ध्यान रखते थे जितना धृति का रखते थे। वो दोनों भी खुश थे और खुलकर इन खूबसूरत लम्हों को एंजॉय कर रहे थे। धृति भी अपनी पूरी प्रेगनेंसी के दौरान इन दिनों जितना खुश नजर आती थी पहले कभी नहीं हुई थी। अर्णव के प्यार और साथ को पाकर वो ताज़े फूल सी खिल उठी थी। अब अर्णव काम के साथ उस पर भी पूरा ध्यान देता था, उसकी बातें सुनता था, उसकी भावनाओं को समझता था, उसका ख्याल रखता था, उसके साथ मिलकर भविष्य के सुनहरे सपने सजाता था, उसे घुमाने लेकर जाता था। अर्णव उसके जीवन साथी के साथ उसका सहारा भी बन रहा था। धृति के सभी नाज नखरे भी उठाता था, जितना उससे बन पड़ता था उसकी परेशानियों को दूर करने की कोशिश करता था, उसकी उलझनों को समझता था और बहुत ही प्यार से उसे संभालता था। अर्णव और धृति के बीच आई दूरियां अब कम होने लगी थीं। धृति की शिकायतें भी दूर हो गई थीं। भावात्मक रूप से दोनों एक दूसरे से जुड़ने लगे थे। अर्णव सिर्फ धृति ही नहीं बल्कि अपने बच्चे से भी अलग ही लगाव महसूस करने लगा था। सब कुछ अच्छा चल रहा था। शाम का वक्त था। अर्णव आज भी धृति को लेकर घूमने निकला था और रास्ते में अचानक ही उसके पेट में दर्द शुरू हो गया। अर्णव ड्राइव कर रहा था और धृति पैसेंजर सीट पर बैठी थी। कार में मध्यम संगीत बज रहा था और साथ ही दोनों बात भी कर रहे थे। अर्णव का फोन बजा तो उसका ध्यान धृति पर से हट गया। धृति को दर्द शुरू हुआ तो वो पलटकर अर्णव को देखने लगी, पर वो चेहरे पर गंभीर भाव लिए किसी से फोन पर बात कर रहा था। धृति अपने लबों को आपस में भींचे कुछ देर तक वो अपनी हथेली से अपने पेट के निचले हिस्से को सहलाते हुए दर्द कम होने का इंतजार करने लगी, क्योंकि पहले भी एक दो बार ऐसा दर्द उठा था उसे, पर कुछ देर में आराम हो जाता था। 9th मंथ था तो डॉक्टर का कहना था कि ये नॉर्मल है, पर आज बात आम दिनों जैसी नहीं थी। दर्द कम होने की जगह बढ़ता ही जा रहा था। जब धृति से ये असहनीय पीड़ा बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया तो कार की सीट को अपनी मुट्ठियों में भींचते हुए दर्द से तड़पते हुए उसने अर्णव को पुकारा। अर्णव जी, फोन में बिजी अर्णव के कानों में जब धृति की दर्द से सनी धीमी बिखरी हुई आवाज पड़ी तो उसने चौंकते हुए सर घुमाकर उसे देखा। धृति का पूरा चेहरा पसीने से भीगा था, उसकी सांसें तेज चल रही थीं, आंखें आंसुओं से लबालब भरी थीं और दर्द से बुरी तड़प रही थी वो। उसे इस हालत में देखकर अर्णव पल भर को स्तब्ध रह गया। अगले ही पल उसने कार साइड में रोकी और फोन डैशबोर्ड पर रखते हुए धृति की ओर झुककर उसके पसीने से भीगे चेहरे को अपनी हथेलियों में थामे घबराया हुआ सा उसे सवाल करने लगा। धृति, क्या हुआ तुम्हें? अभी तक तो बिल्कुल ठीक थी तुम, फिर से दर्द शुरू हो गया क्या? आंखें खोलो धृति, कुछ तो बोलो। दर्द इतना था कि धृति कुछ बोलने की स्थिति में नहीं थी। आंखों से आंसू बहने लगे थे। उसने अपनी सारी हिम्मत जुटाते हुए बमुश्किल अपनी आंखों को खोलकर अर्णव के चिंता भरे चेहरे को देखा। बहुत दर्द हो रहा है, सहन नहीं हो रहा मुझसे। मैं अभी हॉस्पिटल लेकर चलता हूं तुम्हें। घबराओ मत तुम, हिम्मत रखो, मैं हूं यहां तुम्हारे साथ। गहरी गहरी सांसें लेकर खुद को शांत करो, हम बस अभी हॉस्पिटल चल रहे हैं। अर्णव बदहवास सौ से समझा भी रहा था, एक हाथ से धृति के सर को सहलाते हुए उसे शांत कर रहा था, उसे आश्वस्त कर रहा था कि वो है उसके पास, और दूसरे हाथ से स्टीयरिंग संभाल ली थी उसने। धृति को इस कदर दर्द में देखकर वो खुद घबरा गया था, पर इसके बावजूद वो धृति की हिम्मत बना था। सारे रास्ते वो उसे संभालने की कोशिश करते रहा। हॉस्पिटल पहुंचने से पहले उसने डॉक्टर से बात भी कर ली थी। यहाँ उनकी कार हॉस्पिटल के बाहर रुकी और डॉक्टर नर्स के साथ स्ट्रेचर लेकर वहां पहुंच गई। अर्णव ने धृति को ध्यान से कार से निकालकर स्ट्रेचर पर लिटाया तो दर्द से तड़पती धृति ने उसकी हथेली को कस के थाम लिया। अर्णव उसे दिलासा देता रहा। कुछ देर बाद रायजादा फैमिली भी हॉस्पिटल पहुंच चुकी थी। धृति के साथ अर्णव भी मैटरनिटी वार्ड में था और उसको हिम्मत दे रहा था। धृति की दर्द भरी चीखों की आवाज पूरे कॉरिडोर में गूंज रही थी। आसान नहीं था एक नन्ही सी जान को इस दुनिया में लाना। अपनी जान की बाजी लगानी पड़ती है, तभी तो माँ को भगवान का दर्जा दिया जाता है, जो अपनी जान को खतरे में डालकर अपने बच्चे को जीवन देती है। आज अर्णव को शिद्दत से धृति की तकलीफ का एहसास हो रहा था। उसका दर्द देखकर उसका दिल दहल उठा था। यहां धृति की चीखें थमी और बच्चे की करुण रुदन की आवाज वहां गूंज उठी। सबके तनावपूर्ण चेहरों पर राहत के भाव उभर आए। ये वक्त जितना मुश्किल धृति के लिए रहा, उतना ही कठिन और चुनौतीपूर्ण अर्णव के लिए भी था। जहां धृति के लिए ससहनीय दर्द को सहकर बच्चे को जन्म देना मुश्किल था, वहीं अर्णव के लिए अपने सामने उसको इतने दर्द में देखकर भी कुछ न कर पाने की बेबसी तकलीफ दे थी। उसका खुद का चेहरा पसीने से तर था और आंखें सुर्ख रंग में रंगी थी। आई एम प्राउड ऑफ यू, अर्णव ने प्यार से धृति के सर पर हाथ फेरा। धृति जो बुरी तरह थक चुकी थी और लगभग बेहोशी की हालत में जाने लगी थी, अर्णव की आवाज उसके कानों में पड़ी तो उसकी अपनी भींची पलकें हिली और सुर्ख निगाहों में गुलाबी पानी लिए वो अर्णव को तकने लगी। अर्णव हौले से मुस्कुराया और उसके चेहरे को अपनी हथेलियों में भरते हुए उसके माथे पर अपने तड़पते लबों को टिका दिया। अर्णव का प्रेममयी स्पर्श धृति के मन के भीतर समा गया और उस दर्द से सने चेहरे पर सुकून के भाव उभर आए। मिस्टर एंड मिसेस रायजादा, मुबारक हो, बेटी हुई है। डॉक्टर के शब्द उनके कानों से टकराए और अर्णव के लबों पर सजी मुस्कान गहर गई। थैंक यू शब्द बहुत छोटा है, पर दिल से बहुत बड़ा वाला थैंक यू मुझे मेरी डॉल देने के लिए। उसके शब्दों में उसके एहसास और उसकी खुशी झलक रही थी, जिसे महसूस करते हुए धृति हौले से मुस्कुरा दी। अर्णव ने अपनी हथेली में उलझी उसकी हथेली को अपने लबों से चूमते हुए उसे सर से लग लिया। कुछ न कहकर भी बहुत कुछ कह गया था वो, और धृति की आंखें एक बार फिर भीग गई थी। इतने में डॉक्टर उनकी नन्ही परी को टावल में लपेटकर उनके पास ले आई। अर्णव ने बड़े ही ध्यान से अपनी बेटी को अपनी बाहों में थामा और धृति के पास ले आया। देखो कितनी प्यारी है ना, अर्णव के चेहरे की खुशी और लबों पर सजी मुस्कान देखने लायक थी। धृति कुछ पला पलक उसे तकती रही, फिर नजरें अपनी प्रिंसेस की ओर घुमाई और मुस्कुराते हुए उसके सर को अपने लबों से चूम लिया। बाहर सबको खबर मिल चुकी थी कि लक्ष्मी ने घर में कदम रखा था और बेटी के जन्म पर उत्सव का माहौल था। बाहर सबको बधाइयां दी जा रही थी, फोन करके सबको खुशखबरी सुनाई जा रही थी, हॉस्पिटल में मिठाइयां बंटवाई जा रही थी।
सबके चेहरे खुशी से खिले थे। दादी जब धृति और उसकी बेटी से मिली तो दोनों के सर से नोटों की गद्दी वारते हुए नर्स को दे दी। सभी बच्ची से मिलने को एक्साइटेड थे और धृति और अर्णव को मुबारकबाद के साथ ढेरों आशीर्वाद भी दे रहे थे। माधुरी और कबीर की खुशी तो संभाले नहीं संभल रही थी। मृणाल और निहारिका भी वीडियो कॉल पर बात कर चुके थे। नन्हा कुश तो अपनी बहन से मिलने को इस कदर मचल उठा था कि उसका बस नहीं चला, वरना फ़ोन से निकलकर उसके पास पहुंच जाता। हॉस्पिटल में जश्न का माहौल बन गया था। रात तक सब यहीं रुके, फिर अर्णव को छोड़कर बाकी सब घर चले गए और अब अर्णव को वक्त मिला अपनी बीवी और बेटी के साथ। उनकी बेटियां दूध पीकर सो रही थी। अर्णव कैंटीन से खाना खाया आया था, पर उससे पहले धृति को खाना खिला चुका था। धृति के बेड के पास टेबल लगाकर बैठा अर्णव उसकी हथेली थामे उसकी उंगलियों के साथ छेड़खानी करते हुए उसके बगल में लेटी अपनी बेटी को देखते हुए खुद ही खुद में मुस्कराए जा रहा था। वो नन्ही परी बिल्कुल सिमट कर सो रही थी। जब वो नींद में हाथ पैर चलाती तो अर्णव के चेहरे के भाव बदल जाते। जब वो नींद में मुंह बनाती तो उसकी मुस्कुराहट गहरा जाती। धृति खामोशी से लेटी एकटक अर्णव को ही देख रही थी। उसे इतने गौर से देखते हुए क्या सोच रहे हैं आप? धृति की आवाज़ अर्णव के कानों से टकराई और निगाहें उसकी ओर घूम गई। कुछ नहीं, बस देख रहा हूँ। जब से वो हुई है तब से बस देख ही रहे हैं आप उसे और खुद ही खुद में मुस्कुराए जा रहे हैं। धृति की ये बात सुनकर अर्णव की मुस्कुराहट गहरा गई और निगाहें एक बार फिर उस नन्ही परी के मासूम से चेहरे पर ठहर गई। मैं कैसे बयां करूं कि इस वक्त मुझे कैसा महसूस हो रहा है? शायद मेरी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए आज मेरे पास शब्दों का अभाव है। हमारी बेटी मेरी ज़िंदगी का सबसे हसीन ख्वाब थी और आज जब वो हकीकत में हमारे पास है तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा। उसके मासूम से चेहरे को जितना भी देखूं मन भर ही नहीं रहा। ऐसा लग रहा है जैसे मैंने पूरी दुनिया जीत ली है, जैसे दुनिया का बेशकीमती तोहफा मिल गया है मुझे। मेरा दिल ही नहीं चाह रहा उस पर से नज़रें हटाने का। उसकी मासूम सी सूरत पर मेरी पूरी कायनात जैसे ठहर सी गई है। एक अजीब सी खुशी और एक्साइटमेंट है मन में, कुछ नर्वस भी हूँ। शायद तुम मुझे पागल ही समझो, पर कुछ ऐसा ही महसूस हो रहा है मुझे। जिस कदर उसकी भावनाएं उलझी थी, उसी तरह उसके शब्द भी आपस में उलझे हुए थे। पर शायद धृति उसकी भावनाओं को समझ रही थी, तभी तो उसके लबों पर ठीक वैसी ही मुस्कुराहट सजी थी जैसी अर्णव के लबों पर ठहरी थी। आप अगर कुछ नहीं भी कहते तब भी मैं आपके मन के भावों को समझ जाती, क्योंकि कुछ ऐसा ही आज मैं भी महसूस कर रही हूँ। एक बच्चे को जन्म देना जितना मुश्किल है, उसे अपनी बाहों में थामकर उसे महसूस करने का, उसकी माँ बनने का एहसास उतना ही खूबसूरत है। मैंने सुना था कि डिलीवरी के पेन से गुजरने के बाद जब माँ अपने बच्चे को देखती है तो अपना सारा दर्द भूल जाती है, और आज मैंने इसे एक्सपीरियंस भी किया। कितने दर्द में थी तब मैं, पर जब आपने मुझे हमारी बेटी को दिखाया तो सारा दर्द खत्म हो गया था। अगर कुछ बाकी था तो वो थी खुशी, माँ बनने की, अपनी बेटी को पाने की, उसे अपनी बाहों में लेकर अपने सीने से लगाकर महसूस करने की। और साथ ही था सुकून कि आप मेरे साथ हैं, आपका प्यार मेरे साथ है। अर्णव और धृति अब एक दूसरे को देख रहे थे, मन के जज्बात निगाहों से बयां हो रहे थे, लब खामोश थे और उस वार्ड में उनकी धड़कनों का शोर गूंज रहा था। मोहब्बत की खुशबू हवा में घुलने लगी थी। कहने सुनने को बहुत कुछ था, या शायद कुछ भी नहीं था, पर एक सुकून था, खुशी थी जो अनमोल थी। टू बी कंटिन्यूड।